जय माँ, सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा कि कृपया अपने वीडियो और ऑडियो को म्यूट कर दें, क्योंकि नहीं तो बीच में वो आता है किसी ना किसी रूप में डिस्टर्बेंस। तो वीडियो और ऑडियो को सभी से अनुरोध है कि म्यूट कर लें। पिछली बार हम लोगों ने श्रीमान, हम लोग वॉल्यूम 9 पढ़ रहे हैं 1957 के, जहाँ माने श्री अरविंद के कुछ थॉट्स और एफोरिज्म पे कमेंट्री दी है। पिछली बार हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था डिलाइट, और यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री अरविंद की जो मूल धारणा है इस सृष्टि के विषय में, ये धारणा, ये हमारा मानसिक शब्द है, बल्कि सच तो ये है कि उनका जो अनुभव है, और यही अनुभव वैदिक काल के ऋषियों का भी है, उपनिषद में भी यही बताया गया है, लेकिन इसको हम लोगों ने खो दिया, क्योंकि कालांतर में ये निर्वाण और मोक्ष, ये संसार दुख से भरा हुआ है, ये सारी बातें बहुत प्रचलित हो गई, अभी भी प्रचलित हैं, और इस कारण साधना का पूरा जो रूप है वो बिगड़ गया। किंतु यदि हम श्री अरविंद, श्री कृष्ण को पढ़ें और फिर श्री अरविंद को भी पढ़ें, तो मूल स्वरूप इस सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि की उत्पत्ति में क्या गया है, तो वहाँ पर ये आता है कि आनंद, सृष्टि आनंद से प्रारंभ हुई है। और इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऋग्वेद में भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, किंतु इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि सृष्टि के मूल में आनंद है, इसलिए सृष्टि का जो कल्मिनेशन है, यदि हम इसको कल्मिनेशन एक शब्द कहें, ये हम कह सकते हैं कि काल की गति में जो कल्मिनेशन है, तो वो आनंद होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा सतह से पीछे हट करके, तो हम देखें कि सृष्टि के अंदर जो चीज़ इसको आगे ले जा रही है, वो वास्तव में आनंद ही किसी न किसी रूप में ले जा रहा है। कितना भी व्यक्ति दुखी हो, व्यथित हो, अगर उससे कहा जाए कि ऐसा करो, हमारी यमराज भैया के साथ साठ गांठ है, पत्र आपके लिए विशेष अनुग्रह करके जल्दी बुलवा लेते हैं, तो मना करेंगे। कोई ना कोई चीज़ें जो हमको पकड़े रहती है, या तो हम पीछे की तरफ जो अच्छा समय था उसको देखते हैं, या आने वाले अच्छे समय को देखते हैं, या इस समय जो हमारा अच्छा समय चल रहा है, जिसके साथ कुछ बुरा भी जुड़ा होता है, लेकिन हम अच्छे को पकड़ करके चलते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि आनंद प्लेजर, पेन, जॉय नहीं है, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो छलक के जो थोड़ा सा मिलता है, वो भी मनुष्य को आगे की ओर बढ़ने के लिए उकसाता रहता है। तो ये मूल एक धारणा है श्री अरविंद की। और इससे दूसरी बात ये भी निकलती है कि यदि आनंद से सृष्टि उत्पन्न हुई है और आनंद की ही ओर जा रही है, तो मार्ग कैसा होना चाहिए? मार्ग भी आनंद में होना चाहिए। श्री कृष्ण इसको एक बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि ग्लैड, श्री अरविंद भी ये वर्ड यूज करते हैं, ग्लैड सरेंडर। आपसे कंपेल करके नहीं सरेंडर कराया जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि समाधि के पास जा करके कुछ माएँ बच्चे को पकड़ के ज़बरदस्ती सिर रखवा रही हैं, या खाना खाओ चुपचाप डाइनिंग रूम का मिला हुआ, नहीं, ये एक जॉयस चीज़ है। ये भगवान की ओर मुड़ना जाना एक आनंद का विषय है। ये एक जैसे कि कठिन दिहाड़ी की मजदूरी नहीं है कि हम ओहो आज अब हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो आनंद में है, उनको भी तो मज़ा आना चाहिए कि ये आ रहा है मेरी ओर, जॉयसली आ रहा है। आप सोचिए, आपके घर कोई व्यक्ति आए मिलने के लिए और वो बहुत दुखी हो कि, और आपको आते ही अपना दुखड़ा रोने लगे कि पता है रास्ते में ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। अब वो जो आपका जो गेस्ट है, आपको क्या लगेगा एज ए होस्ट कि अरे मैंने बेकारी इसको बुलाया, ये तो रास्ते में इतनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। तो हम लोगों को ये स्मरण रखना चाहिए कि ये आनंदमय की यात्रा है, और ये दुख कष्ट इसका जो एक गॉस्पेल बनाया है कुछ लोगों ने, ये वो पथ नहीं है। तो पथ में भी आनंद कहीं ना कहीं हमको आगे ले जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार लोग पूछते हैं कि इसका क्या लक्षण है कि हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, या भगवान का स्पर्श मिल रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है डिवाइन का। कई लोग सोचते हैं सीधा विजन्स और वॉइसेस या कुछ पावर्स, लेकिन जो सबसे सटीक है वो है शांति और आनंद का विकास और विस्तार। यदि हमारे अंदर आनंद की जगह डिप्रेशन आ रहा है, हमारे अंदर कोई डिप्रेशन एक बैरोमीटर है, बिल्कुल अपोजिट है आनंद का, तो डिप्रेशन बैरोमीटर है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। आप किसी को भी ब्लेम करिए, कंप्लेंट करिए, फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं हमने एक सही एटीट्यूड नहीं है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हम बंध गए हैं, बंद हो गए हैं, किसी छिद्र के अंदर चले गए हैं। और वहीं अगर आनंद बढ़ रहा है तो ये इसका साइन है कि हम सही रास्ते पर हैं। और केवल वो आनंद नहीं जो मेडिटेशन में बैठ के, जीवन की सभी परिस्थितियों में, क्योंकि ये आनंद तो सर्वत्र है, सब चीज में है। तो यही आज का विषय है। श्री अरविंद के एक एफोरिज्म से प्रारंभ होता है और हम लोग पेज नंबर ये 9 जनवरी 1957 है और उसमें श्री अरविंद बड़ी सुंदर एक बात बताते हैं। 9 जनवरी 1957 पेज 7 वॉल्यूम 9 मदर की। पोजेशन इन वननेस एंड नॉट लॉस इन वननेस इज द सीक्रेट। अब यहां पर और भी हैं जो एफोरिज्म जो जॉय के ऊपर हैं, जैसे इन मैन नेचर ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स अगेन सेल्फ कॉन्शियस सो दैट इट मे टेक द ग्रेटर लीप टुवर्ड्स इट्स एंजॉयर। दिस इज द एंजॉयर होम अनोइंगली इट पजेसेस। सो वहां से आ रही है, पोजेशन इन वननेस एंड नॉट लॉस इन वननेस इज द सीक्रेट। गॉड एंड मैन, वर्ल्ड एंड बियॉन्ड वर्ल्ड बिकम वन व्हेन दे नो ईच अदर। देयर डिविजन इज द कॉज ऑफ इग्नोरेंस एज इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो भगवान में स्वयं को एनल कर देना, समाप्त कर देना, ये लक्ष्य नहीं है। तो पहले तो ही अवस्था थी, फिर आवश्यकता क्या थी संसार की, एंजॉय करना। और इस वहीं से हम देखते हैं कि भक्ति शब्द जो है जो वहीं से आता है, भज भुंजति सारे, वो रूट वही है कि जो भगवान में या भगवान के नाम में जो आनंद लेता है वह भक्त है। भक्त वो नहीं कि जो ढिंडोरा पीट के नाच गान कर रहा है। और जो भगवान में आनंद लेता है, भगवान भी उसमें आनंद लेते हैं, तो वो देखिए भक्ति का जो मूल है, द म्यूचुअल जॉय ऑफ गॉड इन मैन एंड मैन इन गॉड। तो यहां पर उसका भाव है। और इसके बारे में माता जी पहले बताती हैं कि इस सृष्टि के बारे में जो अन्य धारणाएं हैं, ये तो उपनिषद की धारणा है, श्री कृष्ण भी यही बताते हैं और श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन एक धारणा ये भी है कि इस संसार की शून्य से उत्पत्ति हुई है, जो बहुत ही विचित्र है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि शून्य से कैसे कोई चीज उत्पन्न हो सकती है, Why there would be something instead of nothing? तो कहा जाता है कि शून्य के अंदर एक ऊर्जा विद्यमान है, there is an energy, उस एनर्जी को नेचर कहा गया। और वह एनर्जी घूमती 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 धीरे धीरे अपने पैटर्न्स बनाती है और पैटर्न्स फॉर्म्स के रूप में प्रकट होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर इस सृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं है, पर्पस नहीं है, क्योंकि उसके ओरिजिन में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक नथिंगनेस है। तो अगर कोई बोले कि प्रयोजन फिर हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, तो इस तरह से जो कहते हैं वो कहते हैं वापस नथिंगनेस में चले जाना, या नथिंगनेस को अपने मुख से बोलना अटपटा सा लगता है एक्सप्रेस करना इसको शेरविन सावित्री में एज ए विद ए टच ऑफ ह्यूमर डिस्क्राइब करते हैं, इन हिम निर्वाणा लिव्स एंड स्पीक्स, टाइटन की बात बता रहे हैं। तो ये एक अवधारणा है कि नथिंगनेस से आया। दूसरी अवधारणा है कि एक दृष्टा है, एक पुरुष है जो साक्षी है, लेकिन ये संसार कैसे आया, ये माया है, इल्यूजन है। तो आप इल्यूजन से निकल करके उस ब्रह्म में जो एक निर्वैयक्तिक परम शांति की अवस्था है, परम शांति क्यों है, क्योंकि उसमें क्षोभ नहीं है, मतलब वो शांति की वो अवस्था है क्योंकि उसके अंदर कोई स्टर नहीं है। तो ये भी एक अवधारणा है। एक अवधारणा है जो बुद्धिस्ट अवधारणा है संसार की, कि ये संसार दुख है, दुख से ही उत्पन्न, दुख से ही ये चल रहा है। दुखम पहला सत्य है। दूसरा उत्पन्न कैसे हुआ, डिजायर से। अब वो डिजायर एक बड़ी अजीब बात लगती है, क्योंकि इसमें प्रश्न उठता है डिजायर किसके अंदर आया, क्योंकि बुद्ध में तो बुद्ध की, अगर हम जैसे बुद्धिज्म को रिसीव किया गया है, अनात्मवाद है, तो देर इज नो सेल्फ। तो डिजायर कहाँ अराइज हुआ, कैसे अराइज हुआ, खैर वो डिजायर आया, और डिजायर के कारण अगर हम ऐसे भी लें कि वो डिजायर एक इम्पेलिंग फोर्स है जिसने प्रारंभ किया, जो भी ऊर्जा को, ऊर्जा की बात वो भी करते हैं, तो वो डिजायर से संसार चल रहा है। तो लॉजिक है कि डिजायर को आप जितनी जल्दी खत्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एट फोल्ड पाथ बताया है, और आप सृष्टि के बाहर चले जाएंगे निर्वाण में, मोक्ष में. ये मोटा मोटी ये तीन चार धारणा है. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि ये आनंद से उत्पन्न हुई है सृष्टि और आनंदार्थ बनी है और हम आनंदस्य पुत्र हैं. तो भगवान की लीला क्या है, वो एक का आनंद अनेकत्व के आनंद में. और ये इसको हम उदाहरण से लें कि फिर इतना कष्ट से क्यों गुजरना पड़ता है और स्वीकृति कहाँ से मिलती है. अब देखिए, माता पिता हैं तो उनके हृदय में भाव उठता है संतान की. हर माता पिता को पता है कि ये बड़ी कठिन चुनाव में कर रहा हूँ, क्योंकि संतान को संसार में लाना तो सबसे सिंपलेस्ट वर्क है, नेचर कर देगी. उसको नचर करना, वो शुरू से ही समस्या शुरू हो जाती है. और सब जानते हैं, सब देखते हैं. युधिष्ठिर ने तो किम आश्चर्य, ये कहा कि मृत्यु है फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु नहीं है. तो इसमें एक और जोड़ देना चाहिए कि सब देखते हैं कि संतान को बड़ा करना कितना कठिन है, फिर भी सबको संतान चाहिए. आजकल के माता पिता थोड़े स्मार्ट हो गए हैं तो वो दूसरों के अनुभव से सीख गए हैं, दे डोंट वांट अ चाइल्ड. पर वो एक अलग बात है. लेकिन अब देखिए, अब संतान आएगी तो कितनी समस्याओं से गुजरेगी और उस सबको माता पिता सहन करते हैं. कहीं ना कहीं उनके अंदर ये है कि एक दिन बच्चा बड़ा होगा, क्या होगा उससे, आपका जो जॉय है मल्टीप्लाई होगा. और वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, बड़ी विचित्र है. कुछ नहीं करना है, बस बच्चा आगे 5 मिनट बैठ जाता है पास में. आजकल तो ये भी कहा गया है कि बच्चा अगर मम्मी या पापा को बस हग कर ले 5 मिनट को, ज़्यादा नहीं, बस इतना बोल दे, अरे मामा, अरे पापा, 5 मिनट 10 मिनट, उसमें ही माता पिता का कि ये सारी जो मेहनत है वो हमारी सफल हो गई. तो अगर हम एक दृष्टि से देखें तो ये आनंद के वर्धन के लिए है सारा. ये नहीं कि हमेशा ये होता है, आजकल अधिकतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी, हालांकि आजकल शॉर्टकट हो गए हैं, आप स्माइली के रूप में भेज सकते हैं. आप ना भी भेजें तो फ़ोन किसी को पकड़ा दीजिए, वो उसमें हक की स्माइली भेज देगा, अगला व्यक्ति बड़ा संतुष्ट हो रहा है कि मुझे हक कर दिया. ये तो कुछ भी तो वो एक चलन आ गया है. तो यहाँ श्री अरविंद माता जी बता रही हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट श्री अरविंदो सेज हियर, द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट इज कॉल्ड गॉड और गॉड हेड, बट एसेंशियली इट इज डिलाइट. श्री कृष्ण आनंद में. ये डिस्कशन था जो होता रहता था श्री माँ के हस्बैंड में और इनके श्री अरविंद के बीच में. तो माँ बताती कि जब वो बैठती थी तो वो बार बार यही कहते थे कि ये जो संसार है ये इससे उत्पन्न हुआ है, डिज़ायर से, उनके हस्बैंड. और श्री अरविंद कहते थे कि नहीं, आनंद से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उनके अंदर एक बुद्धिस्ट लीनिंग थी. तो ये श्री अरविंद के अनुसार ये आनंद से. द यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन डिलाइट एंड फॉर डिलाइट, बट दिस डिलाइट कैन एग्जिस्ट ओनली इन द परफेक्ट वननेस ऑफ द क्रिएशन विद इट्स क्रिएटर. अब यहां पर ये कंडीशन डाल दी गई कि जितना अधिक हम क्रिएटर के साथ क्रिएशन जुड़ेगा, मर्ज नहीं, मर्ज उस तरह का नहीं कि जहां उसने लूज कर दिया अपने आप को. तो यहां पर दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, जितना हम क्रिएटर से जुड़ेंगे लेकिन मर्ज नहीं, उनके साथ हम एक प्रकार का कॉन्टैक्ट, एक प्रकार का ग्रोथ, एक वननेस, ये सब जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे ये आनंद का वर्धन होगा. एंड शुरबिंदो डिस्क्राइब्स दिस वननेस इज द पजेसर, दैट इज द क्रिएटर, द पजेसर बीइंग पजेस्ड बाय हिज क्रिएशन. अब इसको एक और हम लोग उदाहरण ले लें. इतने सारे काम लोग करते हैं लेकिन कौन सा काम है जिसमें सबसे अधिक आनंद आता है? तो एक तो है जो काम आप दिल से करते हैं. दिल से आप कौन सा काम करते हैं उसके अंदर क्या जुड़ जाता है? प्यार जुड़ जाता है. वहां पर आनंद अपने आप आ गया, क्योंकि जो आप काम हृदय से करते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रेम जुड़ गया. प्रेम ऑटोमेटिकली आपके अंदर आनंद लाएगा. एक तो ये है. दूसरा, अगर आप पूछें कि कौन से काम में आनंद आता है, तो जो आपको क्रिएटिव लगता है. इसलिए हम देखें कि कई लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद उनको मैकेनिकल लगने लगता है. इवन आश्रम में भी ये चीज़, अनलेस आप अपने को ओरिएंट करके रखें करेक्टली, तो आप शुरू में बड़ा मज़ा आता है ना, अरे वाह, आप यूटेंसिल साफ कर रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है. आपके अंदर एक क्रिएटिव इम्पल्शन है, क्यों क्या इम्पल्शन है कि अब हम ये काम जो कर रहे हैं माता जी के लिए कर रहे हैं, कुछ समय बाद वो मैकेनिकल हो जाता है। जैसी कोई चीज मैकेनिकल होती है तो वहां पे हम देखें कि जॉय की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो डिलाइट क्रिएशन का डिलाइट है। और एक दूसरा भी उदाहरण ले लें कि जो संसार की सृष्टि हुई, कोई व्यक्ति कोई पेंटिंग बनाता है, चित्र बनाता है, पोइट्री लिखता है, उसको संसार में प्रकट करता है। अब अगर उस कविता को पढ़ के किसी के हृदय में जॉय उत्पन्न होता है तो अब क्या हुआ, अब क्रिएटर और उसकी कृति दोनों मिलकर के एक अद्भुत जॉय क्रिएट करते हैं, मतलब एक अद्भुत जॉय, जो आनंद उनके अंदर छिपा हुआ था वो अब बाहर प्रकट होता है। और ये जीवन की हर चीज में आ सकता है, ये कोई एक पर्टिकुलर क्रिएटिविटी से जो हम समझते हैं कोई आवश्यक वो नहीं। कभी कभी आप देखिए कोई अनयूजुअल सा विचार आता है मन के अंदर और उसके साथ आती है आहा फीलिंग, बड़ा कॉमन प्लेस चीज हो सकती है लेकिन उस आहा फीलिंग के साथ आपके हृदय में अचानक कोई जॉय, तो ये जो आनंद है यही सृष्टि के मूल में छिपा हुआ है। ये श्री अरविंद यहां पर बता रहे हैं, माता जी हमें बता रही हैं। तो दुख क्यों होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ डिविजन, बिकॉज द पजेसर नो लॉन्गर पजेसेस एंड बिकॉज द पजेस्ड नो लॉन्गर पजेसेस द पजेसर। डिविजन इज क्रिएटेड एंड द एसेंशियल डिलाइट इज चेंज इन टू इग्नोरेंस। तो यहां दुख क्यों है, दुख इसलिए है क्योंकि अब सेपरेशन हो गया। अब ये भी हम जीवन में देखते हैं कि जो चीज सबसे प्रिय है, अब पहले क्या फिजिकली अगर सेपरेशन हो गया तो आपको दुख होगा, तो अब दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोग करते हैं। एक होता है कि वो सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन को अल्टीमेट मान करके दुखी होते हैं, लेकिन दूसरा है जहां वो इवॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सीक्रेट वननेस एक अंदर में है जिसमें वो पजेस करते हैं। माता जी इसके बारे में एक प्रार्थना में लिखती हैं कि जिनको हम छोड़ के जा रहे हैं उनके दुख से मुझे भी दुख हुआ, किंतु फिर इस दुख को एक खड़क के रूप में, तलवार के रूप में इस्तेमाल करके अपनी ही गहराई में अंदर प्रवेश करके उस एकत्व में प्रवेश करना चाहिए जहां पर वो चीज कभी अलग हो ही नहीं सकती है। तो सृष्टि में दुख का मूल कारण, अब बुद्ध जी ने तो कहा कि सृष्टि में दुख है, ये तो जानते हैं हम सब, लेकिन दुख का कारण है सेपरेशन। और इसीलिए जितना अधिक हम डिप्रेस्ड हैं उतना अधिक हम भगवान से दूर हैं, सिंपल। और माता जी इसीलिए बताती हैं कि डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ एक्यूट इगोइज्म, क्योंकि जो अहम भाव है केवल मैं, मेरे बारे में सोचना, ये व्यक्ति को बहुत संकुचित कर देता है। तो इग्नोरेंस नॉट इन द सेंस इन विच इट इज यूजुअली अंडरस्टूड फॉर दैट इज व्हाट श्योरबिंदो कॉल्स नेसियंस, दैट इग्नोरेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अदर। अब बताती हैं कि ऑल दोज हु हैव हैड द इनर एक्सपीरियंस हैव हैड दिस एक्सपीरियंस दैट द मोमेंट वन री एस्टैब्लिशेज द यूनियन विद द डिवाइन सोर्स ऑल सफरिंग डिसअपीयर्स। ये एकदम अकाट्य अनुभव है किसी का भी। इस एक चीज के लिए लोग आते हैं आश्रम, कई बार ऐसे लोगों को मैं जानता हूं अचानक आ जाएंगे या दूर से, क्यों आते हैं कोई उनसे पूछे, लॉजिक क्या है? अगर आप उनको बोलो आप अंदर हैं भगवान, हाँ वो मालूम है, सबको मालूम है, लॉजिक क्या है? वो जैसे ही आते हैं और समाधि के ऊपर स्पर्श या केवल प्रवेश करते हैं वो एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है, और वो कॉन्टैक्ट ही है जो हृदय के अंदर एक आनंद को की स्फूंडा दे देता है। ओरिजिनल आनंद भी नहीं, एक टच, और वो टच ही इतना सशक्त होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कभी डिप्रेशन हो तो आप सावित्री पढ़ो, क्यों? सावित्री के अंदर वही आनंद सर्वत्र है, तो उसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से भी हम लोग कहते हैं ना शेरविंद की वाणी को पढ़ते हुए, उफ आनंद आ गया। अब आनंद क्यों आया, उसमें ऐसा क्या है जो हम लोगों को लगता है कोई चीज हमें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वो आनंद शब्दों के माध्यम से प्रकट हुआ, वही आनंद आश्रम के पूरे वातावरण में डोलता विचरता रहता है। This delight of creation, but there has been a very persistent movement about which I spoke to you last week, which puts it at the source of creation, not this essential divine delight, but desire. तो इसकी बात हम लोगों ने कर ली है, वो बुद्धिस्ट टीचिंग है और कई लोग ये समझते हैं, और इस कारण एंड इंस्टेड ऑफ सीइंग द सॉल्यूशन इन ए वननेस विच रिस्टोर्स टू अस द ओरिजिनल एसेंशियल डिलाइट ऑफ द मैनिफेस्टेशन एंड द बिकमिंग दे कंसिडर दैट द गोल एंड ऑल्सो द वे आर ए टोटल रिजेक्शन ऑफ ऑल डिजायर एंड अ रिटर्न टू एनिहिलेशन. देखिए अब पथ बदल गया. अंतर क्या है? बड़ा सूक्ष्म अंतर है. जब ये कहा जाता है कि आपको अपनी कामनाओं का त्याग करना है तो अब लोग बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं एक हाथ की चीज है बट इन द एंड इज बेटर देन अनदर इन द बुश या अनदर इन द स्काई. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वास्तव में आप त्याग क्या कर रहे हो, लेसर फॉर्म फॉर ए हायर फॉर्म, आप सीमित सुख जिसके साथ दुख जुड़ा है उसको त्याग कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको एक हायर फॉर्म ऑफ जॉय मिलेगा, या उस हायर जॉय का आप त्याग कर रहे हो ताकि आपको आनंद की अनुभूति होगी, तब लगता है ओके फाइन. क्योंकि अब यहां पर आपको एसेटिसिज्म का भाव नहीं है. संसार एक इनकॉरिजिबल, एक ठीक नहीं होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन हमको बस इतना समझना है कि हमें सीमित चाहिए या असीम चाहिए. कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी कॉमन सेंस है वो कहेगा हमको तो असीम चाहिए, रास्ता बताओ. तो यही कई बार लोग कहते हैं ना, भाई अभी तो यहाँ पर हमको तो जॉय मिल रहा है, कौन जाने क्या होगा, शून्य में कौन जाना चाहेगा. सच बात यह है. लेकिन जब यह है कि आप शून्य में नहीं जा रहे, आप ये जो डिजायर को इसका त्याग नहीं कर रहे हो, उसको आप रिफाइन करते चले जा रहे हो. जब तक वो एक संसार से जुड़े हो, संसार की चीजें आपके पास हैं, आप चीजों को नहीं छोड़ रहे हो, आप अपने अंदर में अपने जो लोअर नेचर से ईगो के माध्यम से उनको पकड़े थे जिसके कारण दुख हो रहा था, आप धीरे धीरे उनको एक ग्रेटर जॉय से पकड़ते हैं. और इसका एक सिंपल उदाहरण है, कई लोगों के पास शायद होगी, माता जी का कोई वस्त्र खंड या माता जी का कोई कलम छुआ हुआ या कुछ, है ना, क्या होता है उसको मिल करके, क्या जॉय आता है. और फिर आप कभी भी उसको निकाल के, लोग भूल जाते हैं रख देते हैं, लेकिन जब उसको बाहर निकालते हैं उनको, उनके लिए वो सबसे प्रेशियस चीज है. कहते नहीं है लेकिन ये है सबसे प्रेशियस. तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर, आपके अंदर ये पोजिशन का भाव नहीं है, आपके अंदर ये भगवान का है, ये माता जी का, ये मेरा है, मैं रखूंगा, ये भाव नहीं है, ये माता जी का है. और वो जैसी माता जी कौन है? भगवान, हमारे लिए भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं. और जैसे ही हम भगवान की कोई चीज, अब यही चीज को अगर हम जीवन में अप्लाई करें तो जीवन बदल जाएगा. आप किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, उसके साथ जो डीलिंग है वो चेंज कर रहे हैं. तो यहां उसी की बात माता जी कर रही हैं. और फिर वो बताती हैं कि यही एक न्यू ओरिएंटेशन, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में है. कहती हैं कि ये इस प्रकार का डिजायर को बिल्कुल कॉन्कर करना बुद्ध देव के समय में ये आवश्यक रहा होगा उस समय, क्योंकि अगर हम जाएं उस समय की मानसिकता में, या तो सब कर्म कांड में उलझे हुए थे, तो बुद्ध ने, कई लोगों ने उनको अवैधिक कहा क्योंकि वो कर्म कांड, ये पूजा करो, ये रिचुअल करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है. तो बुद्ध ने ये सब कहा, मूल चीज को पकड़ो, मूल चीज है परमानेंट रादर देन टेम्पररी. बड़ी सुंदर बात है. लेकिन उस समय के लिए ये भी कि भाई कामनाओं में रत है मनुष्य, आखिर वो पूजा भी किस लिए कर रहे थे? आप देखें बहुत सारे रिचुअल्स अभी भी, लोग हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको बच्चा मिल जाए, हमको बच्चे की पढ़ाई मिल जाए, अंत में तो आप कामनाओं के लिए कर रहे हो ना पूजा. भगवान के पास जाके आप क्या कह रहे हो? अब देखिए भगवान के पास कोई जाके ये कहे मुझे तुमसे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ठीक है भगवान दे देंगे या ना दें, उनकी मर्जी है, मौज है. अब भगवान के पास आप जाके बोलोगे भगवान ये सब नहीं चाहिए, आप है ना, आप चाहिए, अब देखिए क्या होगा. भगवान कहे अब तू रुक जा, जाने दे सबको, सबको जाने दे, तू रुक जा. अब उसके बाद क्या आनंद की कोई सीमा रहेगी जो भगवान का हो गया? यही अंतर है कि हम वस्तुओं के लिए, भगवान को भी. तो बुद्ध के समय में ये आवश्यक था कि भाई तुम परमानेंट को सीख करो. लेकिन अब क्या होना चाहिए? दिस न्यू ओरिएंटेशन, आई मीन न्यू इन इट्स टेरेस्ट्रियल रियलाइजेशन, मस्ट रिप्लेस ऑल द फॉर्मर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन. and open the way to the new realization, which will be a supramental realization. That is why I told you last week that only delight, the true divine delight, can bring about the victory. इसको भी हम एक छोटे से practical example समझ लें. कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो व्यक्ति को डिफीट करने का आप उसे लड़ नहीं सकते. तो सबसे सुंदर साधन क्या है? आप मुस्कराओ. वो बहुत परेशान होगा, वो चाह रहा है कि आप दुखी हो और आपको देखेगा दुखी नहीं कर पा रहा है. तो कुछ समय के बाद वो कहेगा इसे माथा पच्ची करने का वेस्ट ऑफ एनर्जी है कि नहीं है? वो माँ कहती है एक जगह, लाफ एट द एडवर्सरी. एडवर्सरी कौन है जो हमको दुखी करना चाहता है? वो क्या कहता है? तुम बेकार हो, तुम यूजलेस हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम क्या भगवान की ओर जा रहे हो, मिसफिट हो, अनफिट हो, पाप से भरे हो. और आप उसकी बात मान लेंगे तो क्या होगा? दुख से भर जाएंगे. और अगर आप उसको बोले हाँ हाँ ठीक है भाई, तो अपनी देख, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, हमको इससे क्या मतलब, वो छुड़ा देंगे जो छुड़ाना है, आप देखिए वो बहुत परेशान होगा. तो यहीं पर माँ बताती हैं कि लाफ एट द एडवर्सरी. आगे स्पष्ट करती हैं, नेचुरली देयर मस्ट बी नो कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट दिस डिलाइट इज, एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम द बिगिनिंग शिरोबिंदो पुट्स अस ऑन आवर गार्ड टेलिंग अस दैट इट इज ओनली व्हेन वन हैज पास्ड बियॉन्ड एंजॉयिंग्स दैट वन कैन एंटर इनटू ब्लिस. ये भी इंटरेस्टिंग है, शिरोबिंद के एफोरिज्म्स हैं. व्हेन यू हैव पास्ड बियॉन्ड रीजनिंग्स देन यू हैव नॉलेज. When you have passed beyond desire, when you have passed beyond enjoying, see क्यों कह रहे हैं शेरविल? आपको वो अवस्था से गुजरना है. तो दो प्रकार के लोग हैं, एक जो कहते हैं अच्छा डिजायर के ऊपर अब हम करेंगे ही नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम एक तरह का कपड़ा पहनेंगे. नो, यू हैव टू पास बियॉन्ड. तो जो एसेटिक होते हैं उनकी समस्या यही होती है कि वो बाईपास, इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बाईपास. और बाईपास का क्या होता है आपको मालूम है, आपको दवा तो वही खानी पड़ती है. आप बाईपास करके नहीं कह सकते आप मैं रन करूंगा, मैं दवाई नहीं लूंगा, डॉक्टर ने कह दिया मेरी नस वस, कुछ नहीं, सब करना है आपको, लाइफस्टाइल चेंज करना है, दवाई भी खानी है, रेगुलर चेकअप भी करना है. वो करना है आपको. तो वो पहले तो ये करते बाईपास करने की चेष्टा, फिर वो अपने को सब चीज से संकुचित करके, भय लगता है, मोनेस्ट्री में लोग रहते हैं ऐसी जगहों पे, स्पेन में गया था मोनेस्ट्री में मैं रुका हुआ था, तो अच्छे लोग थे लेकिन वो दिख रहा था कि वो बड़े मतलब संसार से भयभीत होते थे क्योंकि उनको एक बाहर निकलना ही प्रॉब्लम है. लेकिन ये जैसे आश्रम है ये मोनेस्ट्री नहीं है, यहाँ सारा संसार है और आप बाहर भी जाते हो, कोई किसी के ऊपर कोई बाध्यता कंपल्शन नहीं है. तो लेकिन क्यों यहां पर मां स्पष्ट रूप से, यू हैव टू पास बियॉन्ड एंजॉयिंग्स, बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है. आपको पता है कि भोजन में क्या स्वाद आता है. पहले मुझे कई बार लोग कहते थे अरे ठीक है लोग भगवान भगवान की बात करते हैं, हमको तो भाई वाइन पी के ही आनंद आ जाता है. तो मेरा यही उत्तर होता था, मैंने कहा देखो तुमने वाइन चखा है डिवाइन नहीं चखा है. मैंने वाइन भी चखा है और डिवाइन भी चखा है, क्वालिफाइड मैं हूं बताने के लिए कि दोनों में क्या अंतर है. दैट्स कॉल्ड पास्ट बियॉन्ड एंजॉयिंग्स. यू नो व्हाट इट इज एंड यू नो कि ये क्या डिग्रेडेड चीज है, आप उससे गुजर चुके हो. फिर एक समय के बाद आपको लगता है ये डिग्रेडेशन है, आपको कंट्रास्ट पता चलता है. तो पास्ट बियॉन्ड एंजॉयिंग्स नॉट थ्रोन अवे, तो ये न्यू ओरिएंटेशन है. और इसी में आप देखें मनुष्य उस रास्ते पर चल चुका है. यंग जनरेशन इज गोइंग थ्रू दीज एंजॉइंग्स एंड वेरी सून दे आर गेटिंग इवन एग्जॉस्टेड कि नहीं ये नहीं ये क्या कितने हैं. उसमें से जो निकल के आते हैं दे आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन द एसेटिक, क्योंकि उनको पता है ये क्या है. तो ये पास्ट बियॉन्ड एंजॉइंग्स ये है कि आपको खुद को धोखा नहीं देना है कि यही डिलाइट है. ये डिलाइट नहीं है. आप अगर डिलाइट सीख कर रहे हो या डिलाइट भी सीख क्या है भगवान को सीख कर रहे हो, तो ये चीजें आएंगी आते आते सब छूट जाएंगी. क्यों? क्योंकि सुपर डिवाइन ड्रीम का चमत्कार तो अपने आप होगा. तो यहां पर मां बताती बड़े सुंदर ढंग से ये सारा. और फिर कहते हैं लेकिन ये सृष्टि में ये पीड़ा कष्ट सब क्यों आया, बड़ा सुंदर एक कारण देती हैं। पहले तो वो कहती हैं एक प्रैक्टिकल जोकर ने आके ये ऐसा नहीं होना था, माँ एडमिट करती हैं। अब प्रैक्टिकल जोकर क्या होता है, आप देखिए जब जैसी डिलाइट निकला तो कई तरह की उसमें जितने अनंत की डिलाइट की संभावनाएं आ गई। अब आपने देखा है जब आप खेल खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे या कोई भी, अब कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको काम यही होता था कि खेल को बिगाड़ो, और वो करके हंसते हुए चले जाते थे, आपको गुस्सा आ रहा है। अब उनका जॉय इसी में है कि चीजों को बिगाड़ो, दे टेक जॉय। अब ये भी अनंतता में इसकी भी संभावना है प्रैक्टिकल जोकर की। जोकर यही करता है ना, आप देखेंगे कोई मजाक करता है आपके ऊपर, नाउ सडनली यू, लेकिन आप अगर सीरियस हो गए तो बड़े परेशान होते हो। जैसे होली के दिन लोग रंग लगाते, अगर आप सीरियस हो गए तो बहुत परेशान होते हो, और अगर आप इसको एज ए जोक लेते हो ठीक है तो आप परेशान नहीं होते हो। तो यहां पर माँ कहती है प्रैक्टिकल जोकर, लेकिन कहते हैं लेकिन एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि इस सृष्टि में प्रैक्टिकल जोकर के कारण या एक्सीडेंट जैसे भी हम समझे, संसार में दुख नहीं होना चाहिए था। माँ एडमिट कर एज ए डिवाइन मदर शी इज सेइंग नहीं होना चाहिए था। तो जो लोग ये महसूस करते हैं दे आर इन ट्यून विद मदर हरसेल्फ सेज सो, मतलब उसको स्वीकार करती हैं। कहती लेकिन एक चीज हुई दुख कष्ट के आने से, जो ये ना होता तो नहीं प्रकट होती, और वो माँ की वाणी में सुनिए। इफ डिलाइट हैड रिमेन्ड डिलाइट, कंसीव्ड एज डिलाइट, एंड एवरीथिंग हैड कम अबाउट इन डिलाइट एंड यूनियन इंस्टेड ऑफ इन डिविजन, there would never have been any need for the divine consciousness to plunge into the inconscience as love. अब देखिए, आप तकलीफ में हो, पुकारते हो, देवताओं को ये नहीं समझ आती कि ये मनुष्य प्रार्थना एस्पिरेशन क्यों करते हैं। देवता भी कभी कभी करते हैं, जब वो स्वर्ग लोक पर आधिपत्य हो तब जाते हैं वो, लेकिन जो मनुष्य के अंदर, एक जगह माँ से किसी ने पूछा, माँ एस्पायर करने को आप कहती हो लेकिन सच तो यही है ना, हो ही है सो ही जो अल्टीमेटली डिवाइन रची राखा, कहती हाँ निसंदेह। आप थोड़ा बहुत काल की गति में अप डाउन कर सकते हो, मैनिपुलेट, ये भी बताती है माँ, आज के वो मैसेज में भी मैंने वो डाला था, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट शॉट तो डिवाइन का ही होता है। फिर हम एस्पायर करना, कहते हैं माय चाइल्ड द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस डिलाइट ऑफ एस्पिरेशन। अब देखिए प्रार्थना का जो आनंद है, एस्पिरेशन का डिलाइट है, कई सारी प्रार्थना ऐसे, उस दिन हम लोग वो अर्जुन कैसे प्रार्थना करते हैं, जब वो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं सब ये मेरा, मैं कर रहा हूं तुझे, तू कर ना कर, आ नहीं आ, इट डजंट मैटर, आई हैव डिसाइडेड एवरीथिंग। तो अर्जुन के मुख से क्या प्रार्थना निकलती है, त्वमादिदेवं पुरुषो पुराणो। संजय भी क्या कहते हैं, एव मुक्ता यतो ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। अब वो कौन सी प्रार्थना है, वहां आप क्या मांग सकते हो, आप आनंद से भर जाते हो कि सब तो आप कर रहे हो, ये जॉय की बात है। ठीक है, मुझे अपने काम के लिए जो भी आपको उपयोग में लाना है ले आइए, अल्टीमेटली Giving oneself and let thy will be done सबसे wisest चीज होती है, और वो तब हम भगवान के प्रेम का स्पर्श पाते हैं जब आप कठिनाई में होते हो। ऐसे लोग हैं कई, माना नहीं माना, पर जब कठिनाई का समय आता है ना तो लोग बोलते हैं ना, अंधविश्वासी एक थे सो कॉल्ड वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस, नाम सुना होगा, उनकी बात है या किसी और, लेकिन मोस्ट लाइकली उनकी, उनको बड़ा असह्य बैक पेन हुआ, नहीं मानते थे भगवान में कुछ इसमें, बड़ी उन्होंने ऐसी धृष्टता से भरी हुई किताबें लिखी हैं, लेकिन वो जब बैक पेन कोई इलाज नहीं, लूट स्प्रिंग जहां कहते हैं मैजिकल वाटर है वहां नहाने चले गए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप, कहते क्या पता ठीक हो जाए कहते ना मरता क्या ना करता। और फिर जो इंटरवेंशन होता है, जो प्रेम, और साधारण जीवन में भी आप कठिनाई में होते हो, आपका मित्र आ जाता है, सुन लेता है, वो जो जॉय मिलता है आपको केवल उससे, वो प्रेम है और कुछ नहीं, वो मित्र कुछ नहीं कर सकता, केवल वो इतना कह देता है मैं हूं ना वही आपको जॉय दे देता है। तो ये जो अनुभव है, एक जॉय का जो अनुभव आता है सेपरेशन के बाद यूनियन का, ये अनुभव नहीं मिलता। तो यहां पर माँ उसको एक्सप्लेन करती हैं कि प्रेम प्रेम जो है, फिर वो कहती हैं आफ्टर ऑल समथिंग हैज परहैप्स बीन गेन्ड फ्रॉम इट, और वो ऑर्डिनरी नहीं है, लव इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग। पर फिर वो कहती हैं कि हाँ ये मैं समझ रही हूं कि लेकिन ये सब बातें तब हमें ज्ञात होती जब हम उस पार चले जाते हैं, लेकिन जो इसमें हैं उनको तो ये क्रूड और क्रूएल जोक लगता है। सही है, वो समझती हैं इस बात को, ये करुणा है माँ की कि आई अंडरस्टैंड कि ओनली द सॉल्यूशन ऑफ चेंजिंग दिस मैनिफेस्टेशन इनटू अ ट्रू ट्रूली डिवाइन रियलिटी इज ए फार सुपीरियर सॉल्यूशन, बाहर जाने के बजाय आनंद से भर करके ये जीवन जीना। एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू अटेम्प्ट नाउ विद ए सर्टिट्यूड ऑफ सक्सीडिंग वन डे और अनदर, फॉर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग डिस्पाइट एवरीथिंग वॉट इज ट्रू इज इटर्नली ट्रू। तो यहां पर वो कहती हैं लेकिन मैं इस बात को समझ रही हूं कि जो लोग इधर हैं उनको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो आप खेल सकते हो, ये खेल है उधर जाकर। कभी कभी कोई व्यक्ति जो पहुंच गया है वो ऐसे बोले, एक्चुअली ये आफ्टर ऑल इज ए प्ले, इट कैन बी वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि जो इधर खड़ा है वो कहेगा तुम्हारे लिए प्ले होगा, तुम्हारे ऊपर वो मुसीबत नहीं पड़ी है जो मेरे ऊपर पड़ी है। आप कोई व्यक्ति जो ऑपरेशन के लिए जाने वाला है उसको बोलो ये इल्यूजन है, वो कहेगा अच्छा ठीक है आप चले जाओ मेरी जगह। तो हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि ये अलग अलग स्टेजेस में ये अनुभव है। एक स्टेज पे ये अनुभव है, परंतु ये भी सच है कि जब हम उसके अंदर लेबर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको करुणा हमेशा रहनी चाहिए। अब माँ बड़ी सुंदर बात बोलती है, इनफैक्ट दिस वुड अमाउंट टू सेइंग दैट व्हेन वन प्लेज वन इज मच मोर डिवाइन देन व्हेन वन इज सीरियस। पहले माँ कहती हैं कि यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम, खेल रहे हो ना पता होना चाहिए ये खेल है प्ले है, लेकिन अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप फुटबॉल की तरह किक हो गए। फिर ये भी कहती हैं लेकिन रूल कौन बताए, तो उनको फिर भी करुणा है कि भाई रूल तो कोई रूल बुक बताता नहीं है। तो ये कहना तो बड़ा आसान है यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम, पर आपको रूल सीखते सीखते, वो जो कहा है ना एक शायर ने कि उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, कुछ आरज़ू में कट गए कुछ इंतजार में। तो आपको रूल सीखते सीखते 60 बरस हो जाते हैं, जब रूल पता चलते हैं तो आप खेलने लायक नहीं रहते। तो ये भी माँ कहती कि आई अंडरस्टैंड। तो क्या कहती है लेकिन क्या होना चाहिए, बहुत सीरियसली नहीं लेना। हम लोग जीवन को अपने आप को वी टेक आवरसेल्व्स वेरी सीरियसली, वी टेक लाइफ वेरी सीरियसली। यहां माँ ये बताती हैं कि देर इज इट अमाउंट टू सेइंग दैट व्हेन वन प्लेज वन इज मच मोर डिवाइन देन व्हेन वन इज सीरियस, बट इट्स नॉट ऑलवेज गुड टू से दिस। परहैप्स देर इज मोर डिविनिटी इन द स्पॉन्टेनियस प्ले ऑफ चिल्ड्रेन than in the erudition of the scholar or the asceticism of the saint. That's what I have always thought. Only it is divinity which is quite unconscious of itself. और आप देखेंगे भी कि जितने भी लोग एक realized state में जाते हैं वो बच्चों के साथ उनको बड़ा joy मिलता है spontaneously। आप जितने भी आप बुद्ध की कहानियां सुनिए, कृष्णमूर्ति जी की, श्री अरविंद, माता जी बच्चे के साथ, माँ तो बच्चों के साथ, मतलब वो तो यहाँ तक कि कोई मिनिस्टर वेट कर रहा है शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो बच्चे के साथ 2.5 घंटे माँ बैठी हुई हैं। और किसी ने कहा माँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है चला गया, माँ कहती जाने दो इस बच्ची ने तो मुझे अपना सर्वस्व दिया हुआ है। बच्चों के साथ जो माँ ने तो उनके साथ वो रिंगा रिंगा रोजेस खेला हुआ है, तो इवन बड़ों के साथ मदर वुड प्ले। और कहती है उसमें, क्योंकि ये सीरियस एक जगह तो माँ ये कहती हैं कि चूंकि ये संसार से आनंद से निकला है, वर्चुअस जो बहुत वर्चुअस होते हैं ना हमेशा मैं एकदम करेक्ट करूँगा, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। माँ कहती है लेट अस अवॉइड दोज पीपल, और कहती हैं कि जो वर्चुअस लोग हैं वो संसार में सब कुछ धीरे धीरे हटा देते हैं, क्योंकि अंत में वो कहते हैं जो मेरी वर्चु है वही वर्चु है, और वो संसार को बिल्कुल परफेक्ट करने के चक्कर में उसको डिन्यूट कर देते हैं, और दैट्स व्हाई शी सेज लेट अस अवॉइड पीपल हु आर वेरी सीरियस। तो एज फॉर मी आई मस्ट कन्फेस टू यू दैट आई फील मच मोर एसेंशियली माई सेल्फ वेन आई एम जॉयफुल एंड वेन आई प्ले इन माई ओन वे दैन वेन आई एम वेरी ग्रेव एंड वेरी सीरियस मच मोर। अब लोग थे अपनी सारी समस्याएं उनको, कोई कोई थे जो खेलने के लिए आते थे। अमृता का हम जानते हैं कि कैसे अमृता माता जी टॉफी फेंकती, बहुत सारे खेल खेलती थी, तो कभी कभी टॉफी फेंकेंगी और लोग उसको कैच करने की, अमृता इतने क्लमजिली कैच करने की कोशिश की टॉफी हमेशा गिर जाती थी। लोगों ने कहा अमृता क्या है, एक तुमको टॉफी भी पकड़नी नहीं आती है? तो अमृता कहते हैं हाँ टॉफी तो पकड़नी आती है, माँ बहुत कुछ दे रही है उसके साथ, उसको मैं पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। टेनिस ग्राउंड में, टेनिस ग्राउंड का एटमॉस्फेयर महसूस किया होगा आप सब ने, टेनिस ग्राउंड में माँ टेनिस खेल खेल के, और निरोधा को लगता था मुझे तो खेलने को नहीं मिल रहा है मैं क्यों जाऊँ, माँ ने कहा मैं टेनिस की एक एक स्ट्रोक के साथ, क्योंकि वो तो प्रचंड ऊर्जा रिलीज कर रही ना सारे वातावरण में, मैं तुम्हारे कितने कर्मों को हटा रही हूँ, तुमने कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि आपने देखा है खेल के मैदान में केवल जो खेल रहे हैं उनको जॉय नहीं मिलता है, जहाँ उपस्थित हैं उनको भी जॉय मिलता है, और जब स्वयं जगत जननी माँ खेल रही हैं तो आप सोचिए कि क्या आलम रहेगा। पर लोग थे जिनको लगता था कि नहीं मुझे खेलने को नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ पर ये बताते हैं कि ये डिलाइट कैसे हमें प्राप्त हो। 23 जनवरी 1957 फिर से एफोरिज्म है, डिलाइट इज द सीक्रेट, लर्न ऑफ प्योर डिलाइट एंड दाउ शैल्ट लर्न ऑफ गॉड। कितनी बड़ी बात है। आगे लिखते हैं लव इज द की नोट, लव इज द की नोट, जॉय इज द म्यूजिक, पावर इज द स्ट्रेन, नॉलेज इज द परफॉर्मर, द इन्फिनिट ऑल इज द कंपोजर एंड ऑडियंस। अब देखिए इसमें आगे क्या लिख रहे हैं, वी नो ओनली द प्रीलिमिनरी डिस्कॉर्ड्स विच आर एज फियर्स एज द हार्मनी शैल बी ग्रेट, बट वी शैल अराइव श्योरली एट द फ्यूज ऑफ द डिवाइन बीएटीट्यूड्स। म्यूजिशियन होते हैं ना एक लंबे समय तक जिसको लोग कहते हैं अज्ञान में टू टू कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका धीरे धीरे नशा चढ़ता है म्यूजिक का। अब देखिए ये इसमें से देख, कई बार आप स्मॉल पॉइंट्स होते हैं ना जो डायरेक्ट एफोरिज्म से कनेक्टेड नहीं है पर आप ले लेते हो, तो मैंने इस तरह के एफोरिज्म से कुछ एक पिकअप किए हैं। जैसे कई बार लोगों को ये एंग्जाइटी होती है कि आप बोल रहे हो तो कई लोगों को ऑटोमेटिक होती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, अच्छा हुआ नहीं हुआ अगले बंदे ने क्या देखा, लेकिन ये वाक्य में एक पार्ट है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समाप्त हो जाएगा। क्या है, द इन्फिनिट ऑल इज द कंपोजर एंड द ऑडियंस। बोलने वाली माँ है, सुनने वाली भी माँ है, अब वो क्या प्रॉब्लम है, मैटर इज ओवर। तो प्रश्न है हाउ कैन वन लर्न ऑफ प्योर डिलाइट, ये शुद्ध आनंद को हम कैसे जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद वन मस्ट थ्रू एन अटेंटिव ऑब्जर्वेशन ग्रो अवेयर दैट डिजायर्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स गिव ओनली अ वेग अनसर्टेन प्लेजर मिक्सड फ्यूजिटिव एंड ऑल टूगेदर अनसेटिस्फैक्टरी, दैट इज यूजली द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन बियॉन्ड एंजॉइंग्स। वो ये नहीं कहते हैं तुम, वो कहते हैं तुम ऑब्जर्व करो अपने आप को, देखो ये जो मजा है कितनी देर रहता है, नहीं रहेगा, ये इनबिल्ट है क्रिएशन के अंदर और उसका एक कारण है, क्योंकि नहीं तो आप वहीं उलझ के रह जाओगे। अब सुअर को तो उसी मजा आता है कीचड़ में, इसलिए वो प्रगति नहीं करता है, तो मनुष्य को थोड़ी देर के लिए कीचड़ में मजा आ सकता है, बारिश वारिश हो रही हो, गाना हो रहा हो, लेकिन थोड़ी कोई वो कीचड़ में रहेगा हर समय। तो ये इनबिल्ट है मनुष्य के अंदर कि वो जो प्रगति के लिए बने होते हैं ना, वो उसमें बहुत देर तक नहीं रह सकते। तो पहले आपको खुद ही देखना है कि इससे मिलता है सेटिस्फैक्शन, माँ डिनाई नहीं कर रही है, कितनी देर के लिए है, क्षणिक। और ये ग्रेस है कि क्रिएशन इस तरह से बना है, पहली चीज। देन इफ वन इज ए रीजनेबल बीइंग, वन मस्ट लर्न टू डिसर्न व्हाट इज डिजायर एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट मे सेटिस्फाई वन्स डिजायर। अब आती है नेक्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट को स्किप करके नहीं, अरे यार हर बार रसगुल्ला खाता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ, पानी पीता हूँ तो ये तो मुंह से स्वाद भी घुल गया, अंदर में शुगर बढ़ गई, अब आपके अंदर ये आया, अब रसगुल्ले के साथ करो ना करो, लेकिन जीवन के साथ ये चीज़ एक सीख लेता आदमी कि इससे मेरा मुंह छिल रहा है, इससे मुझे अशक्त हो रहा हूँ। वन मस्ट रिजेक्ट देम विदाउट ट्राइंग टू सेटिस्फाई देम। आप सक्सीड करोगे नहीं सक्सीड करोगे, पर प्रयास आपका जारी रहना चाहिए। एंड सो द फर्स्ट रिजल्ट इज एग्जैक्टली वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टेटेड बाय द बुद्धा इन हिज टीचिंग, देयर इज एन इन्फिनिटली ग्रेटर डिलाइट इन कॉन्करिंग एंड एलिमिनेटिंग ए डिजायर देन इन सेटिस्फाइंग इट। ये तो है, कितना भी कठिन हो लेकिन उसके बाद जो एक जॉय की मात्रा आती है वो एक अलग आती है। एवरी सिंसियर एंड स्टेडफास्ट सीकर विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम, सूनर और लेटर, एट टाइम्स वेरी सून, that this is an absolute truth and that the delight felt in overcoming a desire is incomparably higher than the small pleasure so fleeting and mixed which may be found in the satisfaction of his desires. That is the second step. Maa apna ek example batati hain, jab wo ek concert mein jaati hain aur ya theater tha, performance ho raha tha, halanki wo kehti nahi hai कि मेरा उदाहरण है, वो कहती हैं दैट लेडी ऐसे करके लिए, उन्हीं का उदाहरण है। तो पीछे कोई जो बैठा था उसको परेशानी होने लगी, माँ मदर इज वेली टॉल, वो बैठी सामने तो उसका ब्लॉक हो गया व्यू, माँ को पता चल गया। तो माँ कहती हैं दैट लेडी स्लोली, धीरे धीरे उसने अपने आप को जैसे कि थोड़ा सिर नीचे करके, फिर वो कहती है वो लेडी को फिर वो नहीं देख पाई ठीक से, लेकिन उसको अंदर में जो आनंद अनुभव हुआ। ये आज के समय में ये चीज़ है जो लोग डिप्राइव्ड है, पाने का आनंद तो जान रहे हैं लोग, देने का आनंद भूल गए हैं। कुछ देने का जो जॉय होता है ना, आप किसी को प्रेम करते हैं या ऐसे भी, एक बहुत सुंदर एक फिल्म थी प्यासा, उसमें गुरुदत्त का एक सीन है, पिक्चर तो चलो एक जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उस समय जो चल रहा था, लेकिन वो सीन मुझे बहुत टचिंग लगा था कि वो जा रहा अंत में, उसको रिवार्ड मिलने वाला है, फिर वो अंत में कहता है वो गाना है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो देखता है कि ये चीज कितनी निसार है, ये चीज़ें, ये रिवार्ड किस बेसिस पर दिए जाते हैं, वो जान जाता है, ये सब लोग जानते हैं कि रिवार्ड किसको मिलते हैं, तो कहता है इस रिवार्ड के पीछे मैं जाऊँगा, नहीं जाता है वो। तो फिर वो अकेला जा रहा है एक ब्रिज के ऊपर, वहाँ ही कुड हैव गॉन एंड प्रूव्ड, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो कहती थी कि नहीं तुम अच्छे आदमी हो लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो उसको, लेकिन वो बहुत बड़ा फेमस वो बन जाता है, तो देखा जाए तो वो भी वहाँ पर है कि इम्प्रेस करने को कि देखो मैं भी कुछ बन के आया हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन वो देखता है कि वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे ही रस्ते में जा रहा है तो वो देखता है कि एक व्यक्ति ठिठुर रहा है ठंड में, और उस समय तक उसके पास थोड़े उसने आ गए पैसे, तो उसने कोट पहना हुआ अच्छा सा, तो वो देखता है उसको, बस वो कोट को उतारता है और उस व्यक्ति को देख करके आगे बढ़ जाता है। दैट सॉन्ग एंड्स, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बड़ी टचिंग है ये चीज़, कि वो देने का जो जॉय है किसी को भी कहीं पर भी, इससे हम लोग बहुत बार खासकर आज कई बार वंचित हो गए हैं, क्योंकि हर चीज़ आसानी से उपलब्ध है, और फिर हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है कि वी हैव टू, कोई लोग होते हैं डेवलप्ड सोल्स, बच्चे आई नो जो देने में विश्वास करते हैं, और पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चा कई बार कहता है कि मैं इसको दे दूं अपने दोस्त को, नहीं 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 ये बड़ा एक्सपेंसिव है, आप देने दीजिए, वो जो लेसन सीख रहा है ना बहुत सुंदर लेसन सीख रहा है। तो तो यहां पर उसकी बात है सेकेंड स्टेप कि डिजायर सेटिस्फाई करने के बजाय फिर तुम उसको रिस्ट्रेन करना सीखो. नेचुरली विद दिस कंटिन्यूअस डिसिप्लिन, ये एक दिन में होगा नहीं, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम द डिजायर्स विल कीप देयर डिस्टेंस एंड विल नो लॉन्गर बॉदर यू. कुछ समय के बाद वो कहेंगे भाई इसके सामने जाने कोई पॉइंट नहीं है. तो कुछ समय बाद वो सो यू विल बी फ्री टू एंटर ए लिटिल मोर डीपली इन टू योर बींग एंड ओपन योर सेल्फ इन एन एस्पिरेशन टू द गिवर ऑफ डिलाइट द डिवाइन एलिमेंट द डिवाइन ग्रेस. अब देखिए माँ क्या बताती हैं, इस योग में बढ़ने का फास्टेस्ट वे इज टू गिव योर सेल्फ, फास्टेस्ट वे. और कोई तरीका, ये मेथड वो मेथड, भगवान मुझे ये देंगे ये अनुभव होगा, इज स्लोइंग डाउन. एंड इफ दिस इज डन विद ए सिंसियर सेल्फ गिविंग, समथिंग दैट गिव्स इटसेल्फ, ऑफर्स इटसेल्फ एंड एक्सपेक्ट्स नथिंग इन एक्सचेंज फॉर इट्स ऑफरिंग. ये नहीं कि भगवान पहले आप डॉक्यूमेंट साइन कर दो, रूपांतरण होगा तो भगवान को मजा आता है, कहते नहीं करता साइन, चल तो देगा कि नहीं देगा. गारंटी चाहिए. अरे तुझे अगर इतना भी विश्वास नहीं है तो क्या पॉइंट, और तू क्या डॉक्यूमेंट उस भावी रूपांतरण के लिए दे रहा है तो फिर देने में क्या है. देने का तो जॉय होता है जब प्रेम से आप देते हो. आप क्या करोगे नहीं करोगे, मेरा क्या होगा नहीं होगा, ये इरेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप केवल उस देने के आनंद में ही संतुष्ट हो. ये होती है भक्ति, ये रंग लाती है. One will feel that kind of sweet warmth, comfortable, intimate, radiant, which fills the heart and is the herald of delight. एक अंदर एक felicity, एक warmth, एक sweetness, माधुर्य, ये सब अपने आप अंदर में develop होने लगता है और ये herald है. ये आ गया मतलब आनंद बस आने वाला है. और अंत में माँ कहती हैं after this the path is easy. After this the path is easy. आपको करना क्या है, देते जाना है बस अपने आप को. कई बार लोग पूछते हैं साधना का एंड पॉइंट, एंड पॉइंट तो यही है कि आपने सब अपना दे दिया. क्या क्या नहीं दिया ये देखो, सांसें दे दी, हार्ट बीट दे दी, दैट शुड बी द एंड पॉइंट. सब दिया कि नहीं दिया. अम्मा कहती ये इसलिए नहीं देना है कि कैलकुलेशन की मुझे डिलाइट मिलेगा, ये भी बताती हैं एक जगह, ये भाव से नहीं कि मेरा फायदा. जब हाँ फायदा सोचा आपने और उनसे तो कुछ छिपता नहीं है, बट फॉर द जॉय ऑफ गिविंग योरसेल्फ. जय माँ.